वैसे साहब, ये जो अमेरिकन जो अभी स्टेटमेंट आया है व्हाइट हाउस से, जो स्टेटमेंट आया है और उसमें पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया गया और पाकिस्तान की कुर्बानियों को सिरे से नजरअंदाज किया गया है, जिस पर कि कौम मुत्तफिक भी हुई है, एक कौमी असेंबली में मुत्तफिका करारदाद भी लाई गई है और हमारे जो सियासी रहनुमा है उनका यह कहना है कि हमें इस पर एक मुत्तफिका बयानिया भी देना चाहिए, एक नैरेटिव देना चाहिए और अब हमें अमेरिका के उस बेसाखी से अपने आप को छुटकारा पाना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि उसूली तौर पर हमारी खारजा पॉलिसी आज के इस तनाजुर में किन बुनियादी चीजों पर उस्तवार होनी चाहिए?
तनाजुर आज का हो या कल का हो या परसों का, एक मुसलमान की हैसियत से हमारे तमाम मामलात की बुनियाद अदलो किस पर होनी चाहिए, यानी हमें इसी की तालीम दी गई है। आप ये देखिए कि कुरान मजीद ने ईमान के जो बुनियादी तकाजे बयान किए हैं उनमें एक तकाजा कायम बिलकिस्त होकर रहना है, आप इंसाफ पर कायम रहें। कव्वामीना लिल्लाह शुहदा बिलकिस्त, आप सूरह निसा में और सूरह मायदा में इस मजमून की दोनों आयतों को देखें तो उसमें पहले इंफिरादी जिंदगी के बारे में यह कहा गया है कि आप हर हाल में इंसाफ पर कायम रहेंगे, सच्चाई की गवाही देंगे, अगरचे वो गवाही आपको अपने आज़ा अकरबा वालदैन और अपने करीबी लोगों के खिलाफ ही क्यों न देनी पड़ जाए। और दूसरी जगह जहां उसको खारजी मामलात से मुतल्लक किया है वहां अल्फाज ये हैं कि तुमको हर हाल में कायम बिलकिस्त रहना है, इंसाफ पर कायम रहना है, इंसाफ की गवाही देनी है। वला यजमन्नकुम शनान कौमिन अला अल्ला तअदिलू, ए दिलू हुवा अक़रबु लित्तक़्वा, और किसी कौम की दुश्मनी भी तुम्हें इस पर आमादा न करे कि तुम कोई इंसाफ के खिलाफ बात करो, इंसाफ की बात करो, यही तकवे के ज्यादा करीब है। अगर आप खारजा पॉलिसी दाखिला पॉलिसी में इस बुनियादी चीज को छोड़ देंगे तो फिर उसके बाद आप असल में सहरा और बयाबान में सरगर्दा होंगे जहां हर तरह की आफात मौजूद होती हैं और अखलाकी वजूद की हिफाजत क्योंकि आप नहीं कर सके होंगे तो फिर अल्लाह ताला उन्हीं आफात के हवाले कर देता है। ये जो आपने मसला उठाया है, आप ये गौर करें कि क्या इससे मुतल्लक बयानिया तरतीब देने का वक्त ये है या वो था जब हम इस बैनुल अक्वामी सूरत हाल में आगे बढ़कर घुस रहे थे। अफगानिस्तान एक आजाद मुल्क है, अफगानिस्तान के बाशिंदों को हक है कि वो अपनी क्यादत खुद मुंतखब करें। सवाल ये है कि उनके यहां अगर कोई चीज वाकई हुई और उसमें अमरीका के सामने कुछ मकासद थे तो हम उसका आला एकारी क्यों बने? 35 साल पीछे जाइए ना और फिर ये देखिए कि उस वक्त हमने जो फैसले किए थे वो किसी बयानिये की बुनियाद पर किए थे, वो क्या हक़ो अदल की बुनियाद पर किए थे, वो क्या इंसाफ के बुनियादी उसूलों को सामने रखकर किए थे? ऐसा नहीं है। यानी इस तरह के जितने फैसले हैं उसमें एक बड़ी ही खूबसूरत इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, कौमी मफाद।
जी,
कौमी मफाद एक मेरा हो सकता है, एक आपका हो सकता है, एक हिंदुस्तान का हो सकता है, एक अमरीका का हो सकता है। कौमी मफादात यकसा रहते हैं तो आप मिल बैठते हैं, कौमी मफादात में तसादुम पैदा हो जाता है तो यही सूरत हाल बन जाती है जो इस वक्त बनी हुई है। तो अगर आप अदल और इंसाफ पर खड़े हों तो फिर दुनिया भी आपके साथ होती है, खुदा भी आपके साथ होता है। अफगानिस्तान के मामले में जाहिर है कि वो असलन एक कबायली माशरा है, उसके शुमाली हिस्से और उसके जनूबी हिस्से में बहुत तफावत है, उसमें अकवाम का भी बहुत कुछ इख्तलात है। आप जानते हैं कि जुबान, कल्चर, सकाफत, पस मंजर के लिहाज से भी वहां मुख्तलिफ नुकताए नजर के लोग हैं, मजाहब और मसालिक के लिहाज से भी कोई ऐसी बड़ी वहदत नहीं है। मुल्क जिस तरह का है वो अभी तमद्दुन के उस दौर में दाखिल नहीं हुआ जहां तमद्दुनी जरूरियात लोगों को बहुत सी चीजों से वाबस्ता कर देती है। पहाड़ हैं, जंगल हैं, बियाबान हैं, वहां बड़ी तवील जंगें लड़ी जा सकती हैं। आपके शायद इल्म में होगा कि टाइनबी ने जो स्टडी ऑफ हिस्ट्री के आखिर में, ये गालिबन 50 की दहाई में लिखा, तो उसने खासतौर पर उंगली रख के ये बताया है कि दुनिया को सबसे बड़ा खतरा जिन जगहों में है वो दो तीन है, उनमें से एक ये जगह भी। तो जब आप इस सूरत हाल में दाखिल हो रहे थे ये आपको उस वक्त सोचना चाहिए था कि आप किसकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आप किसका साथ देने के लिए जा रहे हैं।
उस वक्त नहीं सोचा ना, इसीलिए जो मेरा जो सवाल था कि आज के तनाजुर में मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आज जिन मसाइल से हम दो चार हैं और हमें पता है कि अगर हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे तो शायद माशी तौर पर भी हमें कुछ नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आज के तनाजुर में अब हमारी पॉलिसी के बुनियादी खदोखाल क्या होने चाहिए।
अब भी उसूल पर खड़े हो जाइए और वो उसूल ये है कि दुनिया में ये चीज तस्लीम कर ली गई है, عالمی سطح پر یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ قوموں کے حق کے خود ارادی کے مطابق ان کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں کس کی حکومت ہوگی. جب آپ یہ کہیں گے کہ فلاں گروہ کو غلبہ حاصل ہونا چاہیے, کوئی دوسرا ملک کہے گا فلاں گروہ کو غلبہ حاصل ہونا چاہیے, تو اس کا اصول کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر یہ کہا جاتا ہے کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائیے. مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر آپ کیا کریں گے؟ یعنی یہ قوم کی بندر بانٹ کریں گے؟ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر تو ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ یہاں منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے, قوم کو فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے, آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں جو وہاں انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں جو وہاں انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ اپنی پراکسی بنا کر یہ کوشش کریں گے کہ آپ ایک گروہ کی حفاظت کریں, کوئی دوسرا دوسرے گروہ کی حفاظت کرے, اور اس کے ذریعے سے فلاں اور فلاں ملک کو وہاں مفادات کے لیے کچھ مواقع مل جائیں یا آپ کو مل جائیں, تو معاف کیجئے گا اس تصادم کی کوئی انتہا نہیں ہے, اس میں یہی ہوتا رہے گا. اور کیونکہ معاملہ ایک ایسے فریق کے ساتھ بھی ہے جو اس وقت دنیا میں سپر پاور کی حیثیت رکھتا ہے, جس سے آپ کے بہت سے اقتصادی مفادات بھی وابستہ ہیں, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر یہ ڈو مور اپنی تفصیلات اور تفصیلات طے کرتا رہے گا اور آپ اس سے کبھی نکل نہیں سکیں گے.
ٹھیک,
صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کمزور قومیں اگر اخلاقی طور پر کسی برتر جگہ پر کھڑی ہو جائیں تو ان کو دنیا کی بھی تائید حاصل ہو جاتی ہے, ان کو داخلی استحکام بھی حاصل ہو جاتا ہے, اور ان کو اللہ کی بھی تائید حاصل ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کا اپنا کوئی اصول نہیں ہے, کسی قاعدے پر آپ نہیں کھڑے ہیں, آپ خود قبائلی تمدن کے لحاظ سے ایڈجسٹمنٹس کر رہے ہیں, تو پھر 35-40 سال کی جو تاریخ ہے وہی دہرائی جاتی رہے گی. میرے نزدیک ان قراردادوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے عملاً کیا چیز کی.